मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 28 अगस्त 2017 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में दो दिनों के गैप के बाद आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें, सच पूछे तो जिस पर मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूं और इनफैक्ट बीच बीच में भी करता रहता हूं, फिर भी मुझे इस विषय पर बात करने की जरूरत महसूस हो रही है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सीधी सी बात है कि इस पर बातचीत करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी उन बातों को समझा गया है। अगर समझा गया है तो उसे ठीक ठाक तरीके से या थोड़ी भी मात्रा में अमल में लाया गया है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होता है कि किसी ने भी नहीं समझा होगा, किसी ने भी अमल में नहीं लाया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ही जो अमल में ला रहे होंगे, जिन्होंने बात समझी होगी। फिर भी जो एक बहुतायत रूप में जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, वह बात इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही है। और चूंकि जिंदगी के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस पर बात की जानी चाहिए। और जिंदगी के साथ ही साथ मैं यहां और भी ऐड करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट स्पेशली सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह विषय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मित्रों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने जा रहा हूं और इस विषय का शीर्षक अगर आप कुछ कहना देना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्टिवेट योर माइंड, या अपने दिमाग को सक्रिय करें, अपने मस्तिष्क को सक्रिय करें, या यूं कह लीजिए कि सोचने की आदत डालें, चिंतन की आदत डालें। सोचने का मतलब ये नहीं कि चिंता करते रहें, चिंतन की आदत डालें। दोस्तों, अभी भी मेरे पास जो मेल आ रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी संख्या नहीं है। और मजेदार बात यह है कि ये जितने भी इस तरह के मेल आ रहे हैं, उन सब के मेल को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, या तो सीधे सीधे लिखे हुए होते हैं या सीधे नहीं भी तो अप्रत्यक्ष रूप से जो उससे अर्थ निकलता है वो यही कि ये सब स्टूडेंट वे हैं जो यंग हैं, नंबर एक। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे हैं, यानी कि कम से कम ग्रेजुएशन के आसपास तो हैं ही। और तीसरी बात कि ये सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने तीन बातें कही कि ये पढ़े लिखे हैं, एज भी ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे का मतलब है कोई दसवीं बारहवीं पढ़ा है, मतलब ग्रेजुएट या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं या पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी पढ़ने के बाद अंदाजा लग जाता है कि इन्हीं के आसपास होंगे। और तीसरी बात यह कि वो सिविल सर्विस कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं। सिविल सर्विस यानी कि हिंदुस्तान की सर्वोत्तम सर्वोच्च पदों पर भर्ती की जाने वाली परीक्षा, जिनके माध्यम से भर्ती होती है। मित्रों, जब वो इस तरह के मेल लिखते हैं तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मेल किस तरीके के होते हैं। देखिए, मेल इस तरीके के होते हैं कि सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए पात्रता रखता हूं। सर, मुझे दूरदर्शन पर न्यूज नहीं मिल रही है, तो किस चैनल पर आती है और कितने बजे वो न्यूज आती है ये बता दें। सर, आप जो अखबार की क्लिपिंग्स प्रोवाइड करते हैं, क्या इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम दूसरे अखबार ना पढ़ें तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें कि सर, आप हमें यूपीएससी का सिलेबस प्रो भेज दीजिए, सर हमें आप अनसॉल्व पेपर भेज दीजिए, सर क्या इसके अनसॉल्व पेपर भी मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो कहां मिलते हैं। मतलब इस तरह के प्रश्न, जिसे आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न केवल प्रश्न करने के लिए किए जा रहे हैं, या मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि शायद मेल लिखने के लिए किए जा रहे होंगे, लेकिन सीधे मेल लिखने के लिए तो नहीं किए जा रहे हैं। ये डेफिनेटली उनकी समस्या है, वो चाहते हैं कि ये हो। कोई सिलेबस चाहता है सिविल सर्विस का, राइट? कोई सिविल सर्विस का क्या सिस्टम है ये जानना चाहता है, कोई अनसॉल्व पेपर चाहता है, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करना, मतलब एक तरीके से प्रमाणित करना चाहता है। मतलब ये सारी वे चीजें हैं मित्रों, जो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप उन्हें ढूंढिए, आप क्यों नहीं ढूंढ सकते उनको? और फिर मुझे लगता है कि अगर आप इन्हीं को नहीं ढूंढ सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि ये मुझे कहां चीजें मिलेंगी मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज यानी कि टेक्नोलॉजी के एज में, तब मैं समझ सकता हूं कि आपके सोचने विचारने का या यूं कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन का दायरा कितना सीमित है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखने के बाद ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आपके 21 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या आप अधिक उम्र की अधिकतम सीमा पार तो नहीं कर गए, तो मैं मित्रों क्या सोचूं? मैं तो केवल ये सोच रहा हूं फिलहाल कि आप तकलीफ मोल लेना नहीं चाहते, आप परेशानी मोल लेना नहीं चाहते। आपको लगता है यार कौन कैलकुलेट करे, मेल भेज दो ना। जबकि मजेदार बात यह है कि जितनी देर में आप मेल लिखेंगे उतनी देर में आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। या ये ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें आप बड़े आराम से दूसरों के द्वारा भी हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसके लिए कहीं आपको बड़े संस्थान में किसी व्यक्ति को सूचित करने की जरूरत नहीं है, वहां से मांगने की जरूरत नहीं। फिर आप क्या कर रहे हैं मित्रों? ठीक है, चलिए आपको वो संस्थान प्रोवाइड कर देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के दे देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के डल मस्तिष्क को लेकर, मैं डल ही मस्तिष्क कहूंगा, ये प्रमाण है कि जो मस्तिष्क है वह एक्टिव नहीं है, वह सोचना नहीं चाहता, सोचने की तकलीफ उठाना नहीं चाहता। या तो वो दूसरे से रिक्वेस्ट करना चाहता है या वो दूसरों को ऑर्डर देना चाहता है। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मांग रहा है। जिस दिन वो पद पर आ जाएगा या कुछ ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी तो वो आदेश देने लगेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, खुद कुछ नहीं करना चाहता। यह इस तरह के मस्तिष्क का बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। मित्रों आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जिले में कोई कलेक्टर है, कोई SP है, कोई थानेदार है, कोई भी हो सिविल जज है, अगर वह सुस्त हो दिमागी स्तर पर तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? क्या आप उसकी तारीफ करेंगे? क्या आपको खुद यह सवाल दिमाग में नहीं उठेगा आपके दिमाग में कि किसने इसे कलेक्टर बना दिया, किसे इसने SP बना दिया, किसे इसने जज बना दिया, किस व्यक्ति ने इसको पटवारी बना दिया? आप खुद प्रश्न करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सार्वजनिक पदों पर है उसके हाथ में सार्वजनिक जीवन की बहुत बड़ी बागडोर है। वह सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव डालता है, वो सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेता है और दिन रात एक्टिव रहता है, फिजिकली भी एक्टिव रहता है, मेंटली भी एक्टिव रहता है। और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है इसका साफ मतलब है कि वो फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं है। और चूंकि वह एक्टिव नहीं है तो सीधी सी बात है कि वह अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वाह नहीं कर पा रहा है और इसके कारण वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन पर उसके इस दायित्वहीनता का या अकर्मण्यता का आप कह लीजिए कि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप खुद उसकी आलोचना करेंगे, हो सकता है कि उसके खिलाफ अगर कोई आंदोलन होता है, कोई जुलूस निकाला जाता है तो आप भी नारे लगाने में शामिल हो जाएंगे, मैं भी शामिल हो जाऊंगा, कोई भी शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम उसके खिलाफ शामिल हो रहे हैं और जिन वृत्तियों के खिलाफ शामिल हो रहे हैं, उसका जो नेचर है, उसका जो तौर तरीका है काम करने का, जिन तथ्यों के खिलाफ हम शामिल हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या हमें इतनी चेतना नहीं होनी चाहिए कि हम कम से कम उन तथ्यों को तो अपने से दूर रखें? मतलब हम उनको तो अपने ऊपर कब्जा न जमाने दें, ये तो हमारा दायित्व तो बनता है ना। और अगर हमें लगता है कि नहीं हम अपने लिए तो जमाने दे सकते हैं लेकिन दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, तो अब आप खुद बता करके देखिए क्या ये न्याय की बात है, और सच पूछिए कि न्याय की बात हो या न हो। मित्रों सफलता ही संभव नहीं है, सफलता बिल्कुल संभव नहीं है। मित्रों मैं खासकर आज के लाइफ मैनेजमेंट में आप सबसे जो बात कहने जा रहा हूं, देखिए मैं जान रहा हूं कि मेरी यह बात थोड़ी सी कड़वी है, मतलब मीठी तो कम से कम नहीं है, लेमन जूस तो नहीं है, टॉफी तो नहीं है, थोड़ी सी कड़वी बात है। दवाइयां अक्सर कड़वी ही होती हैं, सबके लिए नहीं है। मैं शुरू में कह चुका हूं कि बहुत से ऐसे एक्टिव स्टूडेंट भी होते हैं जिनके मेल पढ़ करके मन खुश हो जाता है, मतलब लगता है कि हाँ कुछ सही काम हो रहा है, लेकिन ज्यादा जो संख्या है वो इस तरह की भी है। तो ये बात उनके लिए है और ये उनके हित में है, ये कोई मैं अपने हित में यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबके ही हित में यह बात कह रहा हूं। और याद रखिए कि इस बात का संबंध केवल सिविल सर्विस की तैयारी से ही नहीं है, उसकी तैयारी से तो है ही। अगर हमारे पास एक्टिव माइंड नहीं हुआ, सक्रिय मस्तिष्क नहीं हुआ, हमारे पास सोचने विचारने की क्षमता नहीं हुई, तो मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे हम पूरी की पूरी किताबें रट क्यों न डालें। इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए हम सिविल सर्विस को किनारे कर देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी तो है। अगर हम सिविल सर्वेंट नहीं बनेंगे तो ये थोड़ी है कि हमारी जिंदगी ही अब क्या रह गई, अब क्या जिंदगी ही बेकार हो गई। नॉट एट ऑल। संभावनाओं के अनंत द्वार हैं, एक से एक बेहतर द्वार है। तो जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज होती है, उसके सामने सिविल सर्विसेज कोई इतनी विशाल चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। हाँ, नौकरियों में सबसे बड़ी है, वो हम मान सकते हैं, सरकारी नौकरियों में तो। लेकिन अगर आप जिंदगी की विशालता में प्रवेश करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसकी यात्रा करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो यह केवल एक सक्रिय मस्तिष्क के जरिए ही संभव होगा। डल माइंड के जरिए संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये प्रकृति का बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, जिसे डार्विन ने अपने तरीके से कहा भी कि जिस चीज का हम उपयोग नहीं करेंगे, वह चीज क्रमशः धीरे धीरे नष्ट होकर के खत्म हो जाएगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अगर मैं अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करूंगा, उसे सोचने समझने का काम नहीं लूंगा, उसे नई नई चुनौतियां नहीं दूंगा और चुनौतियों का समाधान उसी मस्तिष्क के द्वारा नहीं निकालूंगा, तो सीधी सी बात है कि ये जो मेरा मस्तिष्क है वो कमजोर पड़ जाएगा, डल पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा। और इसके बाद ठीक है, मेरी जीवन की जो चर्याएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो सब तो होती रहेंगी, लेकिन जो एक विराट विश्व का जो परिदृश्य है, उसमें मैं भ्रमण नहीं कर सकूंगा, उसके साथ मैं इंटरैक्ट नहीं कर सकूंगा। जिंदगी को अपने और उपलब्धियों के साथ और बड़ी चीजों के साथ, सच पूछिए, तालमेल बैठा करके बेहतर नहीं बना सकूंगा। क्योंकि मित्रों, मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर हम पशुओं से किसी भी मायने में अलग हैं, तो उसका एकमात्र कारण है हमारा विवेक, मस्तिष्क और विवेक। मस्तिष्क जो चिंतन करने का काम करता है, विवेक जो निर्णय लेने का काम करता है। तो दोस्तों, ये मैंने छोटी सी बातें आप सब से कही हैं, और प्लीज कोशिश कीजिए। अगर आप चिंतन कर भी रहे हैं, अभी आपका दिमाग एक्टिव भी है, तो बहुत अच्छी बात है, उसे और एक्टिव बनाइए। आपके सामने जो भी समस्याएं हैं, पहले उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप सॉल्व करते करते थक गए और आपको लग रहा है कि अब मुझसे तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तब फिर आप दूसरों से कहिए, सलाह लीजिए, वो बिल्कुल कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप उसके सामने सरेंडर कर दीजिए, सुलझाना तो है ही, लेकिन कोशिश पहले अपनी ओर से होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।